ये रेडियो नेपाल है। सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश को खारिज करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। डेंगू के संक्रमण से आज 4 लोगों की हुई मौत। बीते श्रावण से अब तक देश में कुल 25,569 लोग हो चुके हैं संक्रमित। सुनसरी की देवानगंज गांव पालिका में बिजली गिरने से 2 लोगों की हुई मौत और चीन के यांगचुन शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई आगलागी में 17 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति के गठन के आदेश को रद्द करने का निर्णय किया है। आश्विन 11 में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश 2076 को खारिज करने और कास्की जिले में करुआ सेती जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन क्षेत्र का उपयोग करने देने का निर्णय बैठक ने किया है। मंत्री कार्की ने कहा कि गोरखा जिले में स्थित मध्य सुपर दरौदी खोला जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय वन क्षेत्र का उपयोग करने का भी निर्णय किया गया है। इसी तरह मंत्री कार्की ने बताया कि कानून न्याय और संसदीय विकास मंत्रालय के उप सचिव जंग बहादुर डांगी को ऋण वसूली न्यायाधिकरण के रिक्त कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त करने और कंचनजंगा पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक को पद से हटाने का निर्णय बैठक ने किया। डेंगू संक्रमण से आज एक ही दिन 4 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार मादा मच्छरों के काटने से फैलने वाला डेंगू 76 जिलों में फैल चुका है। डेंगू से अब तक 27,569 लोग बीमार हो चुके हैं, जो इस साल श्रावण से देखने को मिला है। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय के मुताबिक बागमती प्रदेश में सबसे ज्यादा 21,589 लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं। मंत्रालय के मुताबिक अब तक डेंगू से 36 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश, जिला, स्थानीय स्तर और स्वास्थ्य संस्थानों की मांग और उपलब्धता के आधार पर सरकार डेंगू रोग निदान परीक्षण किट उपलब्ध करा रही है। साथ ही डेंगू अनुसंधान और लार्वा विनाश और जागरूकता जैसी गतिविधियों को बढ़ा रही है। बता दें कि नेपाल में साल 2061 में डेंगू के मरीज देखे गए थे और उसके बाद से हर साल डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के नेता डॉ शेखर कोइराला समूह ने आज पार्टी कार्यालय सानेपा में धरना दिया। दोपहर 1 बजे से असंतुष्ट कांग्रेस समूह का धरना कार्यक्रम शुरू हुआ था। सोमवार हुई असंतुष्ट समूह की बैठक ने पार्टी की आंतरिक एकता, समान अवसर और न्याय के लिए पार्टी कार्यालय में धरना देने का निर्णय किया था। कांग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसी ने बताया कि पार्टी केंद्रीय कार्यालय में 1 घंटा धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। असंतुष्ट समूह का कहना है कि यदि 14 गते तक समानुपातिक की सूची तैयार नहीं की गई तो और अधिक विरोध कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उत्तरी गोरखा के मनासलू हिमालय से बीते सोमवार से लापता विश्व विख्यात स्की आरोही हिलारी नेल्सन मृत अवस्था में पाई गई। आज सुबह उन्हें मृत हालात में पाया गया। नेल्सन के शव को पोस्टमार्टम के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए आज काठमांडू लाया गया। ये बात जिला प्रहरी कार्यालय गोरखा के डीएसपी लीलाराज लामिछाने ने बताई। बता दें कि नॉर्थ फेस की एथलीट हेलारी की सन 2018 में मोरिसन के साथ स्की करते हुए लोत्से हिमालय के शिखर से अवरोहण किया था। 8,000 मीटर ऊपर की ऊंचाई से स्की करते हुए अवरोहण करने का कीर्तिमान हिलारी के नाम दर्ज है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के संपूर्ण प्रबंध के लिए तीनों तहों की सरकारों, विभिन्न व्यक्तियों, निकायों और अधिकारियों को निर्देश किया है। आयोग द्वारा आज से जारी की गई निर्वाचन आचार संहिता को नेपाल सरकार और नेपाल सरकार के मंत्रियों, प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्रियों, संवैधानिक निकायों और पदाधिकारियों, नेपाल सरकार व प्रदेश सरकार के निकायों और पदाधिकारियों, स्थानीय कार्यपालिकाओं और उनके सदस्यों व तीनों तहों के कर्मचारियों को क्रियान्वयन करने व करवाने का निर्देश किया गया। इसके अलावा सुरक्षा निकायों, सरकारी, अर्ध सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के समग्र कर्मचारियों, राजनीतिक दलों एवं दलों के भ्रातृ संगठनों, उम्मीदवारों, मतदान प्रतिनिधि सहित सार्वजनिक पदाधिकारी लगायत पर निर्वाचन आचार संहिता लागू होगी। सल्यान में आज हुए जीप हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज सुबह हुए हादसे में जीप चालक कपूरकोट गांव पालिका वार्ड नंबर 6 जलवांग के 21 वर्षीय जीत बहादुर बोहरा, 37 वर्षीय धरना ओली, 40 वर्षीय टोप बहादुर ओली, उनके बेटे 11 वर्ष के बसंत ओली, 30 वर्षीय सुरेश खत्री, 70 वर्षीय खूमलाल ओली, 55 वर्षीय कुमारी ओली और 35 वर्षीय ललित ओली की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय सल्यान के सूचना अधिकारी संतोष खनाल ने दी। हादसे में घायल हुए एक व्यक्ति की प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जीप में 9 लोग सवार थे और जीप के अनियंत्रित से ये हादसा हुआ। बता दें कि जीप सड़क से करीब 150 मीटर नीचे खाई में जा गिरी थी। सुनसरी की देवानगंज गांवपालिका में आज बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में देवानगंज गांवपालिका वार्ड नंबर 1 की 45 वर्षीय रीता देवी यादव और वार्ड नंबर 2 के उदित चंद्र यादव शामिल है। ये जानकारी डीएसपी राजकुमार राय ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ग्लोबल पब्लिक अफेयर संबंधी निमित्त उप सहायक विदेश मंत्री एलिजाबेथ टुंडो नेपाल दौरे पर आज काठमाण्डु आई। काठमाण्डु स्थित अमेरिकी दूतावास से मिली जानकारी के मुताबिक टुंडो के दूतावास के अधिकारियों, युवा परिषद और नागरिक समाज के विभिन्न सदस्यों से भेंटघाट के कार्यक्रम है। साथ ही नेपाल के मीडिया परिदृश्य और भ्रामक सूचना निवारण पर नेपाल के अनुभव के संदर्भ में होने वाले विमर्श में भी वे शिरकत करेंगी। इसके अलावा वे अमेरिकी सरकार के सांस्कृतिक संरक्षण सहायता कार्यक्रम के जरिए पुनः स्थापित नेपाल के विभिन्न सांस्कृतिक संपदाओं का अवलोकन भी करेंगी। नवरात्रि के तीसरे दिन आज माता चंद्रघंटा की पूजा आराधना की गई। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने से शक्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य और विद्या प्राप्त होने का धार्मिक विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट इस साल दशहरे की छुट्टियों में भी सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता बिमल पौड़ेल से मिली जानकारी के मुताबिक न्याय प्रशासन आयन 2073 की दफा 25 के तहत इस अवधि में आने वाले घटस्थापना, शनिवार और विजयादशमी के अलावा बाकी दिनों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पर सुनवाई की जाएगी। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ने कहा कि विकास और प्रविधि का उत्तम संयोजन हो तो देश के विकास में चमत्कारी परिवर्तन लाया जा सकता है। सूचना के सर्वव्यापी पहुंच संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित गोष्ठी में सभामुख सापकोटा ने कहा कि सूचना के अधिकार का जितना अधिक उपयोग किया जाएगा लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा और सभी को सूचना प्राप्त करने के अधिकार का उपभोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नई तकनीक का उपयोग नहीं किया गया तो मानव अस्तित्व ही असांदर्भिक हो जाएगा, इसलिए सूचना प्रविधि के विकास और विज्ञान को अपनाने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। सभामुख सापकोटा ने कहा कि सुशासन के लिए इलेक्ट्रॉनिक शासन आवश्यक है क्योंकि वर्तमान युग सूचना प्रविधि का युग है। यद्यपि सूचना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, उन्होंने बताया कि अभी तक नागरिक स्तर से आयोग को सूचना के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है। सूचना अधिकार कर्मी और वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दहाल ने गोष्ठी में सूचना प्रविधि के विकास, कृत्रिम बुद्धिमता और ई गवर्नेंस के विकास पर एक कार्यपत्र प्रस्तुत किया। दशहरा मनाने के लिए काठमांडू घाटी से अपने घर जाने के दौरान टिकट काटने वाले यात्रियों को ठगने वाले 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यात्रियों से अधिक भाड़ा लेने, फर्जी टिकट देने व एक ही सीट का टिकट एक से अधिक व्यक्तियों को देकर ठगने वालों को महानगरीय प्रहरी कार्यालय ने गिरफ्तार कर कार्यवाही के लिए नजदीक के महानगरीय प्रहरी वित्त व प्रभागों में भेजा है। ये जानकारी पुलिस ने दी। बता दें कि कार्यालय ने यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवसायी लगायत के समन्वय में घाटी के 14 स्थानों में यात्री सहायता कक्ष स्थापित किए हैं। कोविड 19 महामारी के कारण स्थगित हांगकांग के राष्ट्रीय ध्वजवाहक कैथे पैसिफिक ने हांगकांग काठमांडू की उड़ान को पुनः शुरू किया है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के महाप्रबंधक प्रेमनाथ ठाकुर से मिली जानकारी के मुताबिक हांगकांग काठमांडू तक की उड़ान 3 सालों के बाद फिर से शुरू होने जा रही है। बता दें कि नेपाल एयरलाइंस हांगकांग के लिए नियमित उड़ान भरती है। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आसपास पतंग उड़ाने से हवाई उड़ान में खतरा होने के बात बताते हुए तुरंत ऐसे कार्यों को रोकने का आग्रह किया। यदि कोई इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं तो उसके ऊपर प्रचलित कानून के मुताबिक कार्यवाही करने की प्राधिकरण ने चेतावनी दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पूर्वोत्तर चीन के एक रेस्तरां में आग लगने से 17 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। स्थानीय सरकार ने एक बयान में कहा कि चांगचुन शहर के एक रेस्तरां में आज दोपहर 12:40 पर आग लग गई। बयान में कहा गया है कि दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और खोज और बचाव कार्य पूरा कर लिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। भारतीय राज्य महाराष्ट्र के वसई की औद्योगिक इकाई में आज हाइड्रोजन गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 8 मजदूर घायल हो गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश को खारिज करने का मंत्रिपरिषद का निर्णय। डेंगू के संक्रमण से आज 4 लोगों की हुई मौत। बीते श्रावण से अब तक देश में कुल 25,569 लोग हो चुके हैं संक्रमित। सुनसरी की देवानगंज गांवपालिका में बिजली गिरने से 2 लोगों की हुई मौत और चीन के यांगचुन शहर के एक रेस्टोरेंट में हुई आगलगी में 17 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। शुभरात्रि।